उसको भोजन मिल जाए तो फिर दूसरे करते हैं कि नहीं करते हैं तो और सुनते हैं कि परवाह ही नहीं किसी बात की, वो तो भोजन तत्परता से करेगा। तो ये जो हालत है कि सुनते हैं साधन अच्छा लगता है फिर भी वो जीवन में या नहीं आता, इसका कारण ये है कि आप में पहले जिज्ञासा नहीं थी। साधन कोई मिले, कोई बढ़िया बात मिले, कोई संत मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे साधन किया जाए जिससे कि हर जीव का कल्याण हो जाए, ऐसी बात पहले दृढ़ता जग जाती, फिर ढूंढता फिरता है, कोई बात मिल जाती है तो जरूर लग जाएगी, उदाहरण कर लेगा। पर कुछ ले वाली है, यहां मॉल पे बैठे हैं, रुपये कमाते हैं, आराम से रहते हैं, बिजली की सामग्री सब लगी, पंखा लगा हुआ, अंगीठी लगी हुई, पैदा हिंदू लगे, चीजें हैं उनमें आराम कर रहे हैं, और वो साधन की बात करे तो एक तरह से बम्बई कलकत्ता जैसे शहरों में ज्ञान वैराग्य की त्याग की बात करना है, वो बिचारी बात का निरादर करना है, वैराग्य का ज्ञान का इनका तिरस्कार करना है, अपमान करना है, क्योंकि इस बात में यह है ही नहीं, अब बिल्कुल विरुद्ध भोग सामग्री है, और उसमें भोगने के लिए रहते हैं, और आते हैं तो धन कमाने के लिए आते हैं, भोगों को भोगने के लिए आते हैं। अब ऐसा जहां उद्देश्य और ऐसा वायुमंडल है उसमें वे बातें अब काम में कैसे आवे, उनकी बात बिल्कुल ऊंची उल्टी चल उल्टे जा रहे हैं, तो उल्टे चलने वाले भी अलबत्ता भगत पर राजी होते हैं, उनको बातें अच्छी लगती है। इससे एक बात सिद्ध होती है कि बातें सिद्धांत की बड़ी ठोस और पक्की है, वर्षों तक की आपकी आसक्ति है उसको हिला देती है एकदम, इस बात की बातें सच्ची है बिल्कुल इसमें संदेह नहीं। आज में क्यों नहीं आ रही है कि पहले तो इच्छा नहीं हुई, अब इच्छा होती, जिसमें भी जोरदार इच्छा नहीं होती, अगर तात्कालिक इच्छा भी जोरदार हो जाएगी तो फिर जीवन बन जाएगा तो ठीक हो जाएगा। उसमें एक बात और है, जितनी आप बातें सुनते हैं वे सब की सब बातें हम काम में ला रहे ये नहीं होता, आपको जो साधन सुनाई दे उन साधनों में जो सर्व साधन मालूम देते हो और जिन साधनों पर आपका विश्वास हो कि ये साधन अच्छा है और जिस पर हिम्मत हो मैं कर सकता हूं, ऐसा एक दो साधन रोजाना भी सत्संग में पकड़ लिया करो। बस अब जीवन हमारे ऐसे ही बनाना है, सुगम से सुगम, अपनी चीज में अपने दृष्टि में बढ़िया है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, परंतु श्रेष्ठ है और सुगम है, मैं कर सकता हूं, ऐसे साधनों को सुन के लो, दो चार रोजाना सुन लो, ऐसा साधन वो लिख तैयार कर लो और लिख के वो नोट कर लो, पाठ करो, पूजन करो, नित्य कर्म करो, तो कुछ देखो, देख करके कौन सी बात आज काम में क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण है, ऐसे शब्द उस विचार करो, ये बातें काम में आने लगी आएगी, क्योंकि आपकी नियत हो जाएगी तो बाधा करने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए कल मैंने ये बात कही थी कि अपना व्यवसायत्मक बुद्धि अपना निश्चय एक रखो, एक निश्चय से बड़ा भारी काम होता है, कल बड़ी महिमा कही थी उसकी, मनुष्य एक निश्चय कर लेता है आध्यात्मिक मार्ग में चलना ही है तो पहले चाहे जैसा जीवन रहा हो, चाहे जैसी आसक्ति है, कामना है, पाप अन्याय दुराचार भी पहले रहे हो तो आप डरो मत, देखो पाप अन्याय होंगे तो भी भगवान से चल सकते हैं, अरे भगवान को प्राप्त वही होंगे जो अप्राप्त होंगे, वही तो प्राप्त होंगे जो परमात्मा तत्व को जान गए, प्राप्त हो गए, क्या वे प्राप्त होंगे, तो हम तो अधिकारी हैं उसके, जो पापी है दुराचारी है तो भगवान की प्राप्ति के अधिकारी है, क्योंकि हमें तो आवश्यकता है भगवान की प्राप्ति होने की, अभी सोता हो वो ही जगता है, मुर्दा थोड़ी जगता है, विश्वास से हम कितनी विरुद्ध है पर भगवान की तरफ चलने में हम सबके सब स्वतंत्र हैं और हम चल सकते हैं क्योंकि भगवान हमारे हैं। अरे बालक कपूत होते हैं पर माँ थोड़ी होती है, कुपुत्रो जायेता क्वचित अपि कुमाता न भवति, कुपुत्र हो जाता है, माता कुमाता नहीं होती, माता तो वही होती है, ऐसे भगवान हमारे वे ही है, हम कपूत है सपूत है कैसे हैं जैसे जैसे आपके हैं, ऐसे भगवान को याद करके भगवान की तरफ चलो और भगवान से मदद मांगो, काम में नहीं आवे तो उसका दुख होना चाहिए, और दुख करके भगवान को याद करो और उसे प्रार्थना कर कहो कि हे नाथ ऐसा हमारा पवित्र जीवन बन जाए, ऐसे प्रार्थना करो और लगन रखो और नाम का जप करो, कीर्तन करो और स्तुति प्रार्थना करो और अच्छे शास्त्र पढ़ो, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ो, उन चरित्रों से बड़ा लाभ होता है, बड़ा ठीक होता है, फिर रास्ता ठीक बैठ जाएगा। घबराओ मत, आरंभ में आप चाहते हो अभी से अभी ऐसे हो जाए तो आरंभ से तभी हो सकते हैं जब लगन आपकी जोरदार होगी, तो वर्तमान में हो सकते हैं पर लगन कमजोर होगी तो धीरे धीरे होगा, होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं, इसमें लगा हुआ है उसका बिगाड़ नहीं होगा, ये तो बता ही देगा। पार्थ नहीं वे नाम उत्तर विदास विद्यते नहीं कल्याण कल्याण कृत कष्ट दुर्गति ताट गच्छति। भगवान कहते हैं भैया कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति होती ही नहीं, उसका यहां के पदों में बिगाड़ होता ही नहीं, जिसके संरक्षक भगवान है उसको क्यों घबराना चाहिए, उसको तो अपने साधन में तत्परता से लगे रहना चाहिए, फिर उसका काम सिद्ध होता है। संतों ने कहा है ऐसे लगे रहो भाई बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई, बड़ी बड़ी बिगड़ी बात भी सब बन जाती है, बिगड़ी जन्म अनेक थी सुधरे अब ही आज, कल सुनाया था ना, बिगड़ी जन्म अनेक थी और सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी, वो राम को नाम जब मैं तो भगवान का हूं, ये पहले कर लो। साधक करते हैं साधन बहन भाई, वे भगवान का भजन करके फिर भगवान के बनेंगे, फिर भगवान के बनते हैं, इसमें देरी लगती है, भगवान के तो हम बने क्या है ही भगवान के, भगवान कहते हैं ममान सो जीव लोगे जीव भूत करा, वहां पर जीव लोगे जीव भूत कहा, ऐसे नहीं मनुष्य नहीं करा, ब्राह्मण नहीं कहा, सन्यासी नहीं कहा, प्राणी मात्र भगवान के अंश है, तो भगवान के हम हैं ही, तो है ही भगवान के, दृढ़ता से माने भगवान के हम हैं, अब भगवान का भजन करना है तो भगवान के साथ संबंध दृढ़ता से अपना मान लेना है, कारण के भूल हुई है, संबंध तो भगवान का हमारे साथ अटूट अखंड नित्य है ही, तो उस बात को बुला दे नहीं हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान जो अपना अपनापन है भगवान के साथ वो शुद्धि के साथ नहीं है, आप अत्यंत पवित्र हो जाए तब तो भगवान के साथ संबंध, और पवित्र नहीं हो तो भगवान के साथ संबंध नहीं, ये कभी नहीं होगा, हम अपवित्र से अपवित्र हैं तो भी भगवान के हैं और पवित्र है तो भी भगवान के हैं। छोटा बालक खादे में मेले में कीचड़ में सना हुआ ऐसा होता है तो माँ क्या उसका त्याग कर देती है, माँ उसका पूरे कर तो नहीं देखती, माँ देखती है बच्चा मेरा है, बच्चे को देखती, ऐसे भगवान रहते ने प्रभु से चूक किए भी वो पाप याद नहीं रहते भगवान के, भीतर से पुकारता है भगवान को तो कर्म श्रुत सहवार ये की हृदय की बात को सौद में याद करते, रामायण आया है ना, रहते न प्रभु चित्त चूक किए की जो जीव के द्वारा चूक हो गई वो भगवान को याद रहते नहीं, और कर्म श्रुत सहवार ये की हृदय की बात है उसकी जो दृढ़ता से भगवान के स्वरूप ये सौद से याद करते हैं, सौद भी क्यों करते हैं तो भगवान की बहन हो गया कि भाई मेरे को भूल याद नहीं रहती, इसकी चूक याद नहीं रहती, इसके गुण भी भूल न जाऊं, तो ज्यादा जिसके बहम होता है भूलने का वो सौद पे याद कर लो तो पढ़े श्लोक तो याद हो जाएगा, इस बार जो भगवान कहते हैं कर्म शुद्ध सहवार ये की हृदय की बात सौद पे याद करते हैं, मन भूल न जाने कहीं, वो जैसे कृपण की गांठ में आया हुआ धन छूटता नहीं, ऐसे भगवान की तरफ चलने वाला प्राणी भगवान से छूटता नहीं, बहुत लोभी है भगवान, प्रेम की महान लोभी है, तो सच्चे हृदय से चाहता है उसको भूलते नहीं, फर्क इतना है कि उसको मालूम नहीं होने देते भगवान, भगवान का जो स्वभाव है जो भगत मेरे को प्यारा है उसको मालूम ही नहीं होने देते, मया परोक्षम भजता विरोहितम, गोपियों के लिए ऐसे कहा, गोपियों ने कहा कि महाराज ये तो आपको भजन करने वाले उनको भजते हैं, संत देव जो नहीं भजन करना वाले भजते हैं तो उनमें अच्छे कौन से हैं, तो गोपी मैंने बड़ी चालाकी से पूछा तो भगवान ने बड़े महाराज ये तो शत्रु शिरोमणि है, वे कोई कमजोरी भूल जाए कि भुला ना आ जाए, उन्होंने कहा कि ऐसे जो आपस में वो प्रेम करता है वो ही प्रेम करता है, वहां तो कुछ नहीं है, वो तो कुछ नहीं, जैसे हजामत उसने हजामत उसी कर दी, उसे कही क्या लेना, कुछ नहीं, आपस में प्रेम करते हैं। और जो हम श्रद्धा करते हैं, पुकारते हैं, प्रेम करते हैं, भगवान हमारी सुनते ही नहीं, हमारी तरफ देखते ही नहीं, कोई चमत्कार बताते ही नहीं, भगवान हमारे कोई बता ही नहीं सकते, तुमने हमारे वो बजाय तुम्हें तेरे स्वीकार कर लिया, ऐसा संकेत भी नहीं करते। तो वो संकेत करते भगवान कहते हैं कि मया परोक्षम भजता, मैं परोक्ष रीति से भजता हूं, उसको मालूम नहीं होने देता, स्वभाव है। जैसे भगवान ने जो चीजें दी है ध्यान देकर सुनना, स्वभाव की बात थोड़ी सी, भगवान ने शरीर दिया, इंद्रिया दी, अंतकरण दिया, सामग्री दी, तो ये सब है दी हुई, पहले अपनी नहीं थी और अब भी अपनी नहीं है, है भगवान की ही, परंतु भगवान देते इस ढंग से है जो जिसको प्राप्त होती वो अपनी ही मानता है कि मेरी तो इंद्रिया है, मेरा ही मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा ही शरीर है, मेरा ही परिवार है, मेरा ही धन है, मेरी ही जमीन है, और तुम्हारी ठीक हाँ आज से 80-90 वर्ष पहले थी नहीं, 90 वर्ष बाद रहेगी नहीं, तेरी है कहाँ। परंतु भगवान के देना का ऐसा ढंग है जो जो लेता है उसको अपनी ही मालूम देती है, तो ये तो उसकी महान उदारता है। ऐसे ही सब चीजें भी दे देते हैं, फिर अपने को जनाते नहीं, संसार में कोई थोड़ा सा उपकार करता है, मैंने इतना काम किया, तेरे को ऐसा पढ़ाया, इतना बड़ा किया, छोटा तू मानता नहीं, तेरी दृष्टि भी नहीं मानती है, हमने कितना कष्ट उठाया तेरे लिए, भगवान ऐसा कभी नहीं कहते, कभी नहीं कहते, पालन सबसे अधिक करते हैं, रक्षा सबसे अधिक करते हैं, परंतु कभी एहसान नहीं करते, कभी उस पर एहसान लालते ही नहीं, ऐसे जैसे लाटते नहीं स्वभाव है, ऐसे ही भजने वालों के साथ में भजन करके प्रेम करे वो भी जनाते ही नहीं, वो देखते हैं कि देखो मेरे पर विश्वास कितना है, कैसा भरोसा है मेरा, वो देखना चाहते हैं भगवान मेरे को दिखावे, तो भगवान कहते हैं मेरे दिखाने पर विश्वास होगा, वो मेरे पर विश्वास नहीं, वो तो उसके मन बुद्धि पर विश्वास हुआ, यानी कोई देख लिया तो विश्वास हुआ, विश्वास उसका नाम है जो कुछ भी न दी गए फिर भी उसी का ही भरोसा, उसी की आशा रखे। तो भगवान ऐसे साधक भक्त के ऊपर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं। गीता के 12वें अध्याय में जहां भक्तों के लक्षण लिखे हैं, वहां लक्षणों में प्रकार लिखे हैं, तो 5 प्रकार लिखे हैं, और 5 वर्ग प्रिय कहा है, प्रिय यो मत भक्त समय प्रिय, भक्तिमान ने समय प्रिय, भक्तिमान ने प्रियो ना प्रिय प्रिय बताया है, तो ऐसे शुद्ध भक्तों को तो प्रिय बताया है। और ये तो धर्म्या मृतभूतम यथोक्तम परिपाषते सद्दधाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया, साधन करने वाले भक्तों को कहते हैं भगवान मेरे को अत्यंत प्यारे हैं, अब सिद्ध भक्तों को तो प्यारे कहते हैं, साधकों को कहते हैं अत्यंत प्यारे। ये तो धर्म्या मृतभूतम यथोक्तम परिपाषते, उपासना करते हैं, और सद्दधाना मत परमा श्रद्धा करके मेरे पारायण हो गए, वे भगवान को प्यारे क्यों लगते हैं अरे, कहते हैं सिद्ध भक्तों को तो अनुभव भी हो गया, मेरा परिचय भी हो गया, उनको मेरा परिचय तो कुछ हुआ ही नहीं, इतने पर मेरे पारायण कहते हैं, उनका मेरे सिर पर ऋण है, जब तक अपनी प्राप्ति न करा दूं तब तो उनका ऋण मैं उधार ही नहीं सकता, इस वास्ते वे मेरे को बहुत ही अधिक प्यारे लगते हैं। आपके घर में भी कोई नौकर रहे, रातों जग कर खट करके परिश्रम करके परिश्रम करे, काम करे, सेवा करे, आप पर कोई ऐसा नहीं ला दे, तो उस मकान उस नौकर के मालिक होते वो मालिक नौकर हो जाते हैं। बड़े बड़े मुनीम होते हैं काम करने वाले, पीढ़ियों से उस घर का काम करते हैं बड़ी तत्परता से, शेर मर जाता है तो महाराज लड़के और बहुआ सब उस ऐसा कायदा रखते हैं जैसे कोई हमारे ससुर है, जैसे कोई बड़े भारी आदमी मालिक है, ऐसा कायदा रहे, लड़के डरते हैं, लड़के सिनेमा में जाएंगे छिप कर जाएंगे, मुनीम जी को पता नहीं लग जाए, क्योंकि मुनीम जी नौकर है तुम्हारा, तुम मालिक हो, पर नौकर होते हुए अपना जीवन दे करके उनके घर के सुधार के लिए समय लगाया है, तो उसका नौकर बनना पड़ता है, तो सच्चे हृदय से नौकरी करने वाला मालिक होता है और नौकरी लेने वाला गुलाम होता है। तो भगवान कहते मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि है, तो सब भगत मुकुटमणि है, परंतु साधक भक्त बहुत ज्यादा आदरणीय है भगवान के दरबार में, अत्यंत प्यारे हैं वो। इस वास्ते भगवान जनाते नहीं और प्यारा बहुत लगता है वो भक्त। अब हमें क्या पता लगे कि हमारे पर भगवान की कृपा है, क्या इसका क्या पता पहचान क्या है, हमारे को तो जनाते ही नहीं जनाए बने, हमारे विश्वास कैसे हो। कि जानना है सिर्फ विश्वास, वो असली विश्वास नहीं होता है। विश्वास तो स्वतः होता वो बढ़िया होता है, क्योंकि तो कुछ पहचान होगा तो पहचान है, पर उस पहचान की तरफ लोगों की दृष्टि नहीं है। वो क्या पहचान है, भगवान अपनी मार्मिक बात सुनाते हैं, ग्रंथों के द्वारा बातें बता देते हैं, घटनाओं के द्वारा बातें बता देते हैं, संत महात्माओं के द्वारा विलक्षण विलक्षण बातें बता देते हैं। तो भगवान को सब ध्यान में है, ये भगवान याद रखते हैं, इस वास्ते उनको विचित्र बातें बता देते हैं। नहीं तो पूछा जाए, आप लोग जाने, मैंने तो ऐसा देखा है कि बहुत बढ़िया बातें मेरे को मिली है, पर मेरे पर भी मेरी ये असर है कि मैंने उन बातों के लिए उद्योग नहीं किया, मैं कोई विशेषता से त्याग नहीं किया, विशेष उद्योग नहीं किया, फिर भी इतनी विचित्र विचित्र बातें मिलती है, क्या बताऊं आपको, बहुत आश्चर्य जैसी बातें मिलती। एक बात याद आ गई बीती हुई, गोरखपुर की बात है कई वर्षों पहले की, गोविंद का जी सुबह कुछ बातें कह रहे थे, मैंने प्रश्न कर लिया जयदयाल जी गोविंद का से कि महाराज ये जो बातें आप इतनी विचित्र विचित्र बता देते हैं, तो ऐसे हम तो पात्र नहीं है, ऐसे बातों के लायक ही नहीं है, इतनी बातें हमारे कैसे मिल रही है, भगवान के अधेर खाता ही है, कोई हिसाब नहीं है। ये जो हिसाब से जो बात वही मिलनी चाहिए कि हम अधिकारी है, और इतनी ऊंचे दर्जे की बात मिल जाए, हम तो वैसे अधिकारी अपने को मान दे रही, फिर कैसे मिल जाती है। तो गोविंदा जी भी मुस्कुराए और उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कही जो कुछ शर्म भी आती है। वो बात कही कि लड़की का पिता है जो वो अच्छे से अच्छा घर देखता है अपनी प्यारी पुत्री के लिए, अच्छा घर देखता है जिसे मेरी संतान कभी किससे कष्ट न पावे, दुख न पावे, ऐसा देखता है, परंतु ऐसा ज्ञान मिले तो लड़की घर पर थोड़ी है, कुंवारी थोड़ी है, ब्याहनी पड़ती है। भगवान के यहाँ ऐसे संत महात्मा है, उनके सामने अधिकारी नहीं मिले तो वे तो कहते ही है वो तो भगवान तो मिलाएंगे, क्योंकि लड़की कुंवारी थोड़ी रहेगी, उसको शादी तो करेंगे। इस तरह की बात है, तो भगवान कृपा करके ऐसी मार्ग की सत्संग की विलक्षण विलक्षण बातें बता देते हैं, मार्ग बता देते हैं, शंकाओं का समाधान कर देते हैं। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं और मन में शंका है, ऐसे पुस्तक खोलते उसी पुस्तक उसी जगह आपकी बात मिलती है। आप सारे घर में बैठे बात कर रहे हो और बाहर कोई चलता हुआ बात करता आवाज आती है, उसमें भी आपका ही शंका का समाधान हो रहा है। एकांत बैठे भजन कर रहे हैं और थोड़ी देर आलस आने लगा, हवा से जोर से कुमार फराक बोलता है, बोलने का अर्थ हुआ कि सावधान हो जाए तो नींद क्या लेता। ऐसे भगवान के चमत्कार कई होते रहते हैं साधन कराने में, बहुत विचित्र विचित्र होते हैं, परंतु मनुष्य की अगर दृष्टि नहीं होती, वो चमत्कार चाहता अपने मन के अनुसार, हमारे मन के अनुसार मिले हम चमत्कार मानेंगे। अरे भगवान तुम्हारे साधन बढ़ने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं और कर ही रहे, करते ही चले जा रहे हैं, और जो जो भजन बढ़ेगा क्यों तो इन बातों की तरफ लक्ष्य होगा तो दिखते रहेंगे। इस वास्ते भगवान के विश्वास के ऊपर साधकों को चलता रहे, कुछ दिखे ना दिखे भगवान से मांगे यही कि मेरा मन आपको न छोड़े कभी, इस तरह से भगवान की तरफ चलना चाहिए साधक को, फिर परवाह नहीं, फिर सब काम ठीक होगा। अब लोगों में कहते हैं दुख पा रहे हैं सुख पा रहे हैं, अरे दुख सुख कोई चीज नहीं है। एक दिन सुनाया था युधिष्ठिर महाराज से एक दिन द्रौपदी ने पूछ लिया, वन पर्व की कथा है, कहते महाराज आप धर्म को छोड़ दो, छोड़कर एक कदम भी नहीं रखते, और दुर्योधन महाराज न्याय अन्याय देखता ही नहीं, जिस तरह से स्वार्थ सिद्ध हो ऐसे अन्याय कर रहा है, वो अन्याय कर रहा है, वो तो राज्य कर रहा है, आप जंगल में दर-दर भटक रहे हो, तो भगवान है भी नहीं कोई, क्या बात, ये धर्म भी कोई तत्व तो है भी नहीं, ये सफाई से पोल ही है सफाई, ऐसे भाव द्रौपदी ने पूछ ली। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देवी तेरे भीतर ऐसे भाव कैसे पैदा हो गए, पर मैं जो भजन करता हूँ, धर्म का पालन करता हूँ, वो सुख के लिए करता हूँ क्या? सुख के लिए धर्म का पालन करता है, उसे धर्म का मूल्य नहीं होता। भक्ति करता है, उसे भक्ति का मूल्य नहीं होता। वो तो धर्म के लिए करता है, तो ना ये सुख के लिए करता है, तो सुख का ही उसकी आदर है, धर्म का कहाँ आदर है, उसे भक्ति का कहाँ आदर है? इस वास्ते ऐसी शंका कभी करनी नहीं चाहिए। धर्म का पालन करता हूँ कि मनुष्य का धर्म है धर्म का पालन करना। अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो मनुष्य से च्युत हो जाता है, गिर जाता है, पतित हो जाता है। इस वास्ते मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ। तो साधक को अपने साधन में डटे रहना चाहिए, अपनी नीयत पर ख्याल रखना चाहिए। बड़ी भारी बल की एक बात बता, आपके साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, परंतु आपके हृदय में ये बिल्कुल विश्वास और अनुभव है कि मेरे साथ अन्याय करने पर, दुख देने पर, कष्ट देने पर भी मैं उनका अनिष्ट नहीं चाहता हूँ और किसी की कोई खराबी मैं करता नहीं हूँ, मेरी नीयत ठीक है। ऐसी दृष्टि होते ही महाराज आपकी बड़ी शांति रहेगी। अब विपरीत से विपरीत घटना घटने पर भी चित्त में बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता रहेगी, आनंद है। क्यों? तो मैंने कोई कसूर किया नहीं भाई, मैंने कसूर किया ही नहीं। कुछ बात मेरे को क्या दोष है? क्योंकि कसूर तो नहीं किया, वो दुख दे रहा है, दुख दे रहा है, वो तो मेरे पापों का नाश कर रहा है। क्योंकि दुखदायी परिस्थिति आती है पापों के फल से, सुखदायी परिस्थिति आती है पुण्य के फल से। तो सुख देगा तो हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा, और वो दुख दे रहा है तो हमारे पापों का नाश कर रहा है। तो एक तो वो नाश कर रहा है, एक मैं भजन ध्यान कर रहा हूँ, डबल फायदा हो रहा है। बहुत ही खुशी की बात है, बड़ी आनंद की बात है। अन्याय मैं करता नहीं, मेरे साथ में इतना अन्याय कर रहे, इतना दुख दे रहे, इतना कष्ट दे रहे, तो भगवान की कृपा सब दिन मस्त होना चाहिए, नाच उठना चाहिए। वाह वाह वाह, प्रभु बड़ी कृपा कर दी आपने, वो निहाली कर दिया। इस तरह से उनको जानना चाहिए कि भगवान की बहुत विशेष कृपा है। विश्वास से आदमी को कभी हारना नहीं चाहिए, और कई दिनों से कोई दिखता ही नहीं, महात्म दिखता ही नहीं, तो भी अपने को काम अच्छा है कि नहीं इसको देखो, नतीजा मत देखो। गीता ने कहा फल शब्द निबद्ध दे, फल को देखता है वो बन जाता है। इस बार फल को नहीं देखना है, अपने को कर्तव्य को देखना। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कभी नहीं फल पर, अपने को कर्तव्य कर्म ठीक है कि नहीं उस लाइन पर ठीक रहो। इसलिए वो भगवान को बोल रहे, तुम्हारी मर्जी आगे करो, करो जहाँ मर्जी हो वहाँ मैं को भेज दो, जैसी परिस्थिति आपके उचित समय वैसी दे दो, मैं तो ये आपकी तरफ चलता रहूं, बस इतना ही भाव रहता है। तो साधक को यह देखना नहीं चाहिए और लगे रहना चाहिए। और संसार के विमुख होना, संसार से विमुख होने का मतलब गृहस्थ छोड़कर कहीं चला जाना ये नहीं है। इसका अर्थ है कि संसार से जो सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, मान चाहते हैं, बड़ाई और वाह वाह चाहते हैं, ये चाहना हमारा बंधन करने वाली चीज है। इस वास्ते ये संसार से चाहना नहीं है, यही संसार से विमुख होना है और संसार की सेवा करना, दो काम करना, अपनी तरफ से तन मन वचन से सेवा करना है और उनसे सुख आराम माना चाहना नहीं है। ये दो चीज साथ में रख करके सबके साथ बर्ताव करो, ये हो गया संसार से विमुख। और भगवान के समक्ष भगवान के नाम का जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय आदि करता ही रहे, मेरी ध्यान करे, ठीक ध्यान करे, चिंतन करे, जो अपने से हो सके वैसा साधन भगवान की तरफ करे। तो भगवान के सन्मुख होने से चित्त में बड़ी शांति मिलती है। वो भी शांति अगर न देखने में आवे तो परवाह नहीं, अशांति हो जाती भगवान की याद करने से, तो भी हम तो भगवान को याद करेंगे। दुख होता है तो दुख ही हमें स्वीकार है, भगवान का त्याग हमें स्वीकार नहीं है। कष्ट कितना ही आवे तो कुछ हमें स्वीकार है, परंतु भगवान से विमुख होना हमें स्वीकार नहीं है। इस तरह से रखता है ना, उसका भगवान पर बड़ा असर पड़ता है। इतने कष्ट होने पर भी ये केवल मेरी तरफ ही चलता है तो उसका असर पड़ता है भगवान पर। इस वास्ते हमें तो भगवान के भजन में लगना है, संसार से तो विमुख होना है। तो संसार जितना अधिक विमुख होगा उतनी सांसारिक वस्तुएं उनकी सेवा में हाजिर होंगी, और वस्तुओं के पीछे हम पड़ेंगे तो वस्तुएं भागे भी हमारे सामने आवेगी नहीं, ये कायदा है। इस पर मैंने वो दृष्टांत कहा था, एक संत को बड़ा सुंदर स्वरूप देखने में आया, स्वप्न हुआ, स्वप्न में एक स्त्री देखी, तो बहुत ही सुंदर, वैसी कभी कल्पना ही नहीं करी, इतने सुंदर वो महिला मिली। वो आकर बाबा जी हाँ भैया बोलो कितने मेरे प्यास लगी है जल पाओ। अच्छा ठीक, तो अब जल पाने लगे, जल पाते देखा तो वे बाल उनके सामने भी टूटे हुए, पीछे भी टूटे हुए। तो कहते माता जी आपका रूप इतना सुंदर और ऐसे सुंदर होते हुए भी आपके ये बालों की क्या दशा हुई? माताएं तो बालों को बड़ा पालन करती है, बड़ा रखती है, आपके बाल ऐसे कहते टूट गए? तो वो बोली महाराज मेरे को जानते जाने का मैया तुम बताओ तुम ये दो कि महाराज मैं लक्ष्मी हूं, जो भगवान की अर्धांगिनी महालक्ष्मी कहलाती वो हूं मैं। तो महाराज ने कहा हाँ भाई लक्ष्मी है तब जगत माता है और सुंदर हो गई बहुत ठीक है। तो फिर ये बालों की क्या दशा हुई? तो बालों की दशा ये हुई कि जो अच्छे संत महात्मा विरुद्ध त्यागी है उनकी मैं सेवा में जाती और उन्हें नाक रगड़ती हूँ, कहती हूँ कुछ स्वीकार कर लिए कर लीजिए। तो महाराज मैं स्वीकार करते ही नहीं हूँ, क्या करूँ? इस वास्ते बाल आगे के घस गए घिस गए घिस गए, विनती करते करते भी ऐसे हो गए। दूसरे दुष्टपुर से वो आते हैं तो मैं जाती हूँ भागती हूँ वो पकड़ के पीछे से, तो पीछे के बाल ऐसे टूट गए। इस वास्ते मेरी ये दशा हुई। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि सांसारिक भोगों को मान सत्कार बढ़ाई आराम को चाहने वाले हैं उनको लक्ष्मी भी नहीं मिलती, पदार्थ नहीं मिलते, उनके घाटा रहता लाखों मिल जाए करोड़ों मिल जाए अरबों रुपए मिल जाएंगे तो भी घाटा ही घाटा रहेगा, उनकी तृप्ति कभी होगी ही नहीं। और जिनको भगवान की तरफ लग गया उद्देश्य मन लग गया भगवान में, तो चाहे खाने के लिए अन्न भी ना मिले, पहनने के लिए कपड़ा भी ना मिले, पर तो इतनी मस्ती रहती है भीतर से जिसको पारा भार नहीं। अरे भीतर से मस्ती उड़ती है उनके मन में और जिसकी तृष्णा रहती है उस भीतर में तो आग लगी रहे, बाहर धंसा है हो जाए भीतर में तो आग लगी रहती है, उनको शांति कहां मिलेगी? संतोषामृत चित्तानाम यद सुखम शांति चेतसाम कुतस्तक दंडलुब्धानाम इतस्तस्त धावता। संतोष रूपी अमृत ने पी लिया है, संतोष तुल्यम निधि अस्थि नान्य, उसके समान कोई निधि खजाना है ही नहीं। ऐसे वे मस्त रहते हैं भगवान के भजन में, आज विभोर रहते हैं महाराज, कोई किसी तरह की चिंता उनकी रहती ही नहीं, क्योंकि भगवान पर अवलंबित है। शरीर की भी परवाह नहीं, जीने की परवाह नहीं, पदार्थों की परवाह नहीं, व्यक्तियों की परवाह नहीं, वह तो एक भगवान में लगे हुए हैं, तो उनके आनंद का कोई पारावार नहीं, इतनी मस्ती में वे रहते हैं। इस बार सांसारिक पदार्थों की इच्छा उनके मन में होती ही नहीं, तो वे भगवान की तरफ विमुख सन्मुख होते हैं, संसार से विमुख होते हैं। तो संसार से विमुख होते हैं उनके सांसारिक लोग उनकी इच्छा करते हैं, जो समझदार होते हैं उनकी सेवा में जितना धन लग जाए, जितनी कुछ अपनी सामग्री लग जाए, उसमें वे समझते हैं हमारी सामग्री सफल हो गई जो इन संतों की सेवा में लग गई। जिस सामग्री से दुनिया मानती है कि हमारे वो सामग्री मिल गई तो हमारा जीवन सफल हो गया, जीवन को सफल मानते हैं, वो सामग्री लग जाती तो सामग्री सफल होती है। इतनी विलक्षणता होती है संतों में, क्यों होती है? भगवान में लगे हुए हैं ना, सच्चा धन उनको मिला है, सच्चा धन। ये कच्चा धन क्या काम का? अरे भाई नोट चाहे करोड़ों रूपये को खत्म, इस तरह से कितना ही धन आपके पास में है, बस प्राण निकलेंगे उस समय कौड़ी एक पास में नहीं है, निर्धन रहे साथ ही। अरे भगवान का भजन करने वाला मस्त रहता है, मगर मरता है तो आनंद विभोर रहता है। शब्द के दर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, वो तो मस्त रहता है। इस वास्ते भगवान के सन्मुख होना है और संसार से विमुख होना है, इसमें मैंने ये बात कही थी। अरे उसका तात्पर्य था कि भगवान तो है प्रकाश स्वरूप और माया है उसकी अंधार है, अंधेरा है ये छाया की तरह है। तो मैंने ये दृष्टांत दिया था कि छाया को पकड़ने के लिए आप जाओगे तो चाहे कितनी तेजी से चलो छाया आगे ही भाग जाएगी, पकड़ में आवेगी नहीं। एकदम कूद करके जाकर पड़ोगे तो छाया आगे दौड़ जाएगी, पकड़ में आवेगी नहीं, क्योंकि आप छाया की तौर दौड़ते हैं और छाया से विमुख होकर प्रकाश की तरफ दौड़ोगे तो महाराज छाया पीछे दौड़ती चली जाएगी, तुझे रहेगी नहीं। ऐसी भगवान की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से चलता है उसके सामने मायिक सामग्री बाकी नहीं रहती, सबकी सब मायिक सामग्री उसके सामने आती है, उसकी गर्ज करती है सामग्री, और कोई स्वीकार कर लेते तो सामग्री सफल हो जाए। सामग्री वाले मनुष्य अपने को धन्य भाग मान ले और अपने को श्रेष्ठ मान लेते हैं, इतनी में हो जाती है, क्योंकि उनके मन में राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो भीतर में पदार्थों की भोगों की गुलामी नहीं है, इस बात से उनकी तृप्त होता हुई जाती है। नदियां सैकड़ों नदियां सैकड़ों हजारों नदियां आगे रोजाना समुद्र में गिरती है, क्यों समुद्र में गिरती है, समुद्र में जल की कमी नहीं है। तो आपूर्य माना मतलब प्रत्येष्टम समुद्र माप प्रवेशंती यदवत तद्वत कामा यम प्रवेशंती सर्वे सर शांति मापनोती न काम कामी, लोगों की इच्छा वाला शांति को प्राप्त नहीं होता। और आपूर्य मान है उसमें सब के सब काम पदार्थ आकर के प्रवेश होते हैं सबके सभी। तो इतने नदियां आती है समुद्र में, तो दो चार नदी भी ऐसी नहीं कि रेगिस्तान में चली जाए जहां पानी बड़ा मुश्किल मिलता है, वहां एक दो नदी चली जाए तो क्या हर्ज है, बहुत लोगों को लाभ हो जाए। पर नदियां जाती ही नहीं, समुद्र में ही जाती है। इस तरह से सब पदार्थ वहीं जाते हैं जहां गर्ज नहीं होती है इनकी, और गर्ज नहीं होती तो आवे तो न जावे तो क्या हर्ज हुआ उसके, और गर्ज आवे तो दुख होगी न आवे तो दुख। जिनके धन की गर्ज है वो धन आवे तो थोड़ा मालूम रहेगा और नहीं आवे तो गर्जता मालूम जाएगी, उसी जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी अधिक बढ़ेगा। वो तो महाराज इतना बड़ा हो जाता है पेट, उसका जो कोई तृप्ति होती ही नहीं, संसार दुनिया मात्र के पदार्थ मिल जाए। इस बात शास्त्रों में लिखा है कि संसार में हिरण्यम पशुवर प्रिय जितनी भोग सामग्री है नाल एक तृप्त्यर्थम, एक के तृप्ति के लिए भी अलग नहीं है। एक दुनिया मात्र की जितनी भोग सामग्री वो सब की सब एक व्यक्ति को दे दी जाए तो एक भक्ति के भी मन की तृप्ति नहीं होगी। और भोगे और देना सब सब जीवों को देना है, एक को कैसे दे दिया जाए, तो इस वजह से तृप्ति उसकी हो ही नहीं सकती सब सामग्री से ही, तो थोड़ी सामग्री से तृप्ति कैसे हो। अगर तृप्ति नहीं है तो तृप्ति क्या है, ये तो दरिद्रता बढ़ाने की रीति है। जो जो पदार्थों का संग्रह करो, भोगों को भोगो, धन संग्रह करो, क्यों ही क्यों दरिद्रता और बढ़ेगी। वो दरिद्रता बढ़ती है पदार्थों की तरफ रुचि होने से, इच्छा होने से, उनकी पराधीनता होने से, गुलामी होने से, उनकी दासता होने से, ये दरिद्रता बढ़ती है। और इसकी दासता ना और भगवान के भजन में लग जाओ तो मगर परवाह ही नहीं आएगी, कुछ भी परवाह नहीं। शरीर की हो तो आप क्या करें, मर जाए तो शरीर मर जाए तो इसे उनकी मस्ती में कमी नहीं आती। बुखार आ जाए, बीमारी आ जाए, बहुत भयंकर बीमारी आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तो उसमें भी चित्त में एक बड़ी मस्ती रहती है, बड़ा आनंद आता है। क्योंकि जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो सब पापों को दूर करके अंतकरण को शुद्ध कर देती है। तो अपने उद्योग से शुद्ध करते हैं और ऐसी परिस्थिति से और शुद्धि आ जाती है तो हमारे शुद्धि में मदद ही मदद मिलती, बाधा मिलती ही नहीं। इस वास्ते उसे कोई दुख नहीं होता। छाया की तरफ अपना मुख न होकर हमारा मुख होना चाहिए भगवान की तरफ, प्रकाश की तरफ, उस तरह मुख रहे फिर परवाह नहीं। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि भगवान की तरफ उतरे तो सब माया हमारे पास आ जाएगी, ऐसा भाव रखता है वो भगवान तक नहीं चल सकता। वो तो भगवान की परीक्षा लेता है कि भगवान की तरफ चले जाए वो कैसे, कितने भोग आते हैं, कितनी सामग्री आती है, उसकी नीयत का है भगवान की तरफ चलने की। उनको तो लेना नहीं है पदार्थों को, भोगों को स्वीकार करना ही नहीं है, सत्य हृदय से परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसा उसका भाव रहता है। इस वास्ते बड़ी तेजी से चलना चाहिए। दूसरी बात, भगवान का भजन करें तो भैया जितनी उम्र चली गई वो तो चली गई, अब जितनी बाकी बच गई है उसको भगवान में, भगवान के भजन में लग जा लगा दो तो आपकी बीती हुई आयु भी सफल हो जाएगी। इसमें से वो दृष्टांत दिया था कि जैसे रस्सी है, लोटा डालकर लोटा बांध करके जल जल के लिए कुएं में रस्सी रखी तो 50-60 हाथ नीचे पानी था वहां तक पहुंचा लोटा। अब हाथ में इतनी सी रस्सी रह गई, इतनी सी रहने पर वो भी खींच कर आगे जल भी आ जाएगा, लोटा भी आ जाएगा, रस्सी भी आ जाएगी, पर इतनी सी रस्सी हाथ से छूट गई तो इतनी सी नीचे नहीं मिलेगी। तो इतनी सी टूटी क्या बात है, इतनी सी नीचे मिल जाए। अरे कुआं 60 हाथ 60 60 नहीं है, वो 80 हाथ चला जाएगा, पता नहीं अगर कितना जल है, जल के भी नीचे चली जाएगी, ऊपर रस्सी नहीं मिलेगी, तो फिर उसका हाथ आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से जब तक उम्र है, जब तक हम जी रहे हैं, तब तक सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाए तो गए सो दिन तो गए, पर तो अब जितने बाकी बचे उनसे सबकी सब उम्र हमारी सफल हो जाए। भगवान ने तो अंतकाल समानव स्मरण मुक्ता गले का अंतकाल में भी मेरे को याद कर रहे, और याद करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो मेरे को प्राप्त हो उसमें संदेह नहीं, नाचित्र संशय, संशय नहीं है इसमें। तो संशय नहीं जो कहना है इसमें पेट में यह अर्थ बता कि संशय की गुंजाइश है, क्यों अंतकाल में तो भगवान को याद करता है और समय भगवान को याद नहीं किए, तो और समय भगवान को याद नहीं किए उसकी मुख्यता रहेगी, अंत समय भगवान को याद की इसकी मुख्यता रहेगी। अब याद नहीं किया वो तो बहुत बीता है समय, वो अगर ऐसा होगा तो फिर उद्धार कैसे होगा, और याद किया है अंतकाल में तो उसका क्या माध्यम होगा। भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति होगी, अंतकाल में भी मेरे को याद करे तो मेरी ही प्राप्ति होगी, संदेह बिल्कुल मत करो। तो महाराज उम्र ऐसे ही बीती ऐसे बीती कोई परवाह नहीं, इसमें एक बड़ा रहस्य है। भगवान ने जीव को मानव शरीर दिया है कि जिसमें सबसे लाभ अधिक लाभ ये ले ले, उसे बता रहे करना बाकी रहे ना पाना बाकी रहे न जानना बाकी रहे, ऐसी प्राप्ति के लिए भगवान ने मानव शरीर दिया जीव को, और ये जीव मानव शरीर ले के भूला रहा, भूला रहा तो भगवान कहते हैं देख तू मेरा भजन नहीं करके मेरी प्राप्ति नहीं करता है तो तेरा जीवन ये सफल नहीं होता, और तेरा सफल नहीं हुआ तो तेरी और मेरी दोनों की बड़ी बेइज्जती होगी। कहते कैसे कि मैंने क्या तो तेरे को शरीर दिया जिस शरीर से तू मेरी प्राप्ति कर ले, वो शरीर मैंने दिया तो मेरी बेइज्जती हुई, तेने वो काम किया ही नहीं, और तेरी भी बेइज्जती हुई वो शरीर लेकर भी तेने काम क्या किया, मेरी प्राप्ति नहीं करी तो दोनों की बेइज्जती होगी। तो वो फजीती कैसे मिटे, भगवान कह रहे तू अंतकाल में भी याद कर ले तो तेरा बेड़ा पार कर दू, तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जाए। इस वास्ते अंतकाल ही समा में वो स्मरण मुक्ता गले, और अंतकाल में भी मेरा स्मरण करता और शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे को प्राप्त होता है, तो थोड़े से थोड़े समय में भगवत प्राप्ति हो सकती है, तत्व ज्ञान हो सकता है। क्यों तो भगवान तत्व ज्ञान दूर नहीं है, शरीर दूर है, इंद्रिया दूर है, मन दूर है, बुद्धि दूर है, और वो सच्ची पुरुष अहम अहम ये भी दूर है, अहम का प्रकाशन है वो तो इतना नजीक है जितना चीज कोई हो ही नहीं सकता, प्राप्त पदार्थ कभी हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं, इतना नजीक है। तो उधर तो केवल वृत्ति लगनी चाहिए, वृत्ति लगी तो बेटा पार, जिसमें मैं अंतकाल में छूट जाने नहीं भगवान ने कि भाई अंत समय में भी याद कर ले किसी तरह से तो मेरा मनुष्य बनाना सफल हो जाए। इस वास्ते थोड़े से थोड़े समय में भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो अब जितना समय है उसमें सब समय हम भगवान में लगा दें। ये बात मैंने कही थी कि आज भगवान में लग जाए और सुबह ही हमारा प्राण चला जाए तो भी उम्र भर भजन माना जाएगा, उम्र भर जिस दिन से लगा है उस दिन से उम्र भर भजन किया, उम्र ही एक दिन वो क्या करे बेचारा, तो उम्र भर भजन होगा उसका। तो अभी आप निश्चय कर ले कि हमें भगवान की तरफ चलना है तो सब सब ठीक, सब वो रसिस्टी वैसाई भी चला जाएगा, सब कुछ काम हो जाएगा। इस वास्ते अपने को कभी निराश नहीं होना चाहिए, संसार की तो आशा दुख देने वाली है और भगवान की आशा निहाल करने वाली है। इस वास्ते संसार की आशा वाला तो रोएगा ही और भगवान की आशा वाला मस्त हो जाएगा, क्योंकि आज परमात्मा है और संसार है ही नहीं, आशा कितनी बार मिलेगा कैसे, ये तो बदल पाया अपने धन से आशा रखने वाला दुखी पाएगा, और भगवान की आशा उनको तो पूर्ण होने वाली है, वो कमी रहने वाली है ही नहीं। इस वास्ते भगवान की आशा रखे भगवान की तरफ चलना चाहिए, सच्चे हृदय से भीतर के भाव में उसका भजन ध्यान कीर्तन उसमें लगे रहो, पुस्तक अच्छी पढ़ते रहो, अच्छा संग करते रहो, आपस में मिलकर के भी सत्संग की बातें करो, एक एक का मदद करो, एक एक का उत्साह बढ़ाओ, एक एक में भजन में लगाओ, गीता जी का प्रचार कैसे हो, भगवान नाम का प्रचार कैसे हो, कीर्तन का प्रचार कैसे हो, सबके लोग सुखी कैसे हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब मंगल देखें, सबके सब सुखी हो जाए, सबका कल्याणी हो जाए, ऐसा हृदय का भाव अटल हमारा हो सुंदर। पर सब के लिए हित करने की तो ते प्राप्तवंती माम एव सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी मस्ती से भगवान की तरफ चलो कि बस हमारा तो बेड़ा पार आज हमने रास्ता मिल गया, आज पता लग गया इस बात में बात इतनी है कि पक्का निश्चय कर लें भगवान की तरफ चलने का, ऐसा पक्का निश्चय हो गया तो हमारा तो काम हो गया, बन गया हमारा काम। ऐसे करके उस निश्चय के ऊपर डटे रहो, लगे रहो अपने तो लोग दिखे तो न दिखे, लोग देखे तो न देखे, तो लोग कहे तो न कहे, तो परवाह मत करो लोगों की। अरे भाई लोगों की परवाह करोगे तो भगवत वचनों की करोगे, तो भगवत वचन है संत महापुरुषों के वचन है, शास्त्रों के पुराणों के वेदों के वचन है, उन वचनों के ऊपर दृढ़ता से विश्वास रख करके सत्य हृदय से भगवान की तरफ चलते रहो, फिर विजय हमारी है, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र। नारायण नारायण।